इसमें कि नाम लेने में कोई काल का विचार नहीं, पवित्रता पवित्रता का विचार, निंदा का विचार नहीं, जाति का विचार नहीं, कुछ नहीं। और दूसरी तरफ हमारी रुचि नहीं हो रही है, महाप्रभु जी क्यों करते हैं, अपने लिए कर रहे हैं या दूसरों के लिए, किसके लिए,
शिक्षा के लिए,
हम साधकों के लिए कर रहे हैं। और अपने को साधक समझ करके ये कर रहे हैं, वो भी ठग नहीं रही है किसी को। जैसे जब भाव में रहते हैं ना, करते हैं, उसी में वो एकदम विभोर हो जाते हैं। जैसे कहा जी हमको कृष्ण में तनिक भी प्रीति का गंध नहीं है, वो अनुभव कर रहे हैं। ये पुलिंदी को, जंगल में रहने वाली एक भील कन्या को, जितना कृष्ण में प्रेम है हमारा तो उतना भी नहीं है। एक हिरणी को कृष्ण में जितना प्रेम है, राधा जी का तीन जी उतना प्रेम हमारे अंदर में। हिरणी बिना किसी बाधा के, परवाह किए बिना, संसार के किसी के भी, पति का भी परवाह नहीं कर करके, एकदम कृष्ण के पास में आकर के उनके मुख के तरफ में निहारती है अपलक, जिसका नेत्र इतना चंचल है हिरणी का, किंतु अपलक उनकी दृष्टि एकदम निकट चली जाती। और हम ऐसी हैं जो अपने पति की परवाह करते हैं, जाति का, समाज का, और उनके पास में आ नहीं सकते। तो इसलिए हमारे अंदर में कुछ प्रेम की एकदम तरीके एक बिंदु, इसलिए वहां पर नृसिंह की उपासना का तात्पर्य नृसिंह देव की, नृसिंह देव के शरण मुहारा करके कृष्ण की उपासना कर रहे हैं, गौरचंद्र की उपासना कर रहे हैं।
और अगर कोई साधक नित्यानंद प्रभु जी के उसमें रहे तो
कोई हर्ज नहीं, महाप्रभु नित्यानंद प्रभु सब एक ही है।
नहीं, नरसिंह देव जी और नित्यानंद प्रभु जी क्या वैशिष्ट है?
नृसिंह देव बलदेव प्रभु जी के, नित्यानंद प्रभु के अंश के अंश के अंश के अंश है नृसिंह देव। बलदेव प्रभु अपने एक अंश नृसिंह देव और वो भक्तों की रक्षा करते हैं।
तो गौड़िया परंपरा वाले में अगर नित्यानंद प्रभु जी की तरफ ज्यादा वो करें तो
कोई हर्ज नहीं, तो एक ही चीज है, एक ही चीज।
ऐसा है कि एक जगह में पढ़ा था कि
अभी तुमको भेद मालूम हो रहा है किंतु उस समय में भेद नहीं मालूम हो रहा। नित्यानंद प्रभु जी सब प्रकार से महाप्रभु जी की सेवा करते हैं, इसलिए नित्यानंद प्रभु की सेवा करने से नित्यानंद प्रभु जिसकी जैसी रुचि है उसी तरह से उसको कृष्ण के चरण में लगा दे। और अभी मालूम होता है जो वो बड़े भाई हैं वो विरोध है, उनमें रस नहीं है, ऐसा मालूम, ऐसा नहीं। महाप्रभु जी में नित्यानंद में ये कोई अंतर नहीं, एक ही तत्व है, नाम भेद है, स्वरूप भेद है।
शील प्रभुपाद जी ने एक जगह ये लिखा कि चार रसों के गुरु नित्यानंद प्रभु हैं और जो उसके हैं श्री चैतन्य महाप्रभु या स्वरूप दामोदर जी।
ये कहने के लिए तो लिखा गया है, सिद्धांत तो ठीक है, किंतु जब वही अनंग मंजरी हो जाते हैं तब फिर पांचों रसों के वही ये इसे से समझो। रघुनाथ के ऊपर में, रघुनाथ दास जी के ऊपर में नित्यानंद प्रभु जी की कृपा हुई और काम उनको पहुंचा दिया। कहाँ पहुंचाया?
महाप्रभु
के पास नहीं, महाप्रभु के पास तो पहुंचाया, किंतु महाप्रभु जी क्या है, राधा और कृष्ण के मिलितन है, उनकी सेवा प्रदान कर दी, राधा और कृष्ण की जुगल सेवा को प्रदान कर दिया। इसलिए ऐसा नहीं समझना चाहिए जैसे नित्यानंद प्रभु नहीं करे। विषय छड़िया कभी शुद्ध हमें मन कभी आमी हे रवि सुंदव, उसके ऊपर में कहा नित्यानंद की
आर कब निताई चंद
करुणा हो
संसार वासना
और कभी तुझ
कभी तुझ। और उन्हीं की कृपा से रूप सनातन की जब हमारे ऊपर में कृपा होगी तो फिर वृंदावन को मैं समझिए वृंदावन क्या है और जुगल क्या चीज है ये समझ। ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी नित्यानंद प्रभु जी की कृपा से ही वृंदावन में आए। उन्होंने लिखा है, नित्यानंद के प्रभु जी की कृपा से मैंने वृंदावन को प्राप्त किया, उन्हीं की कृपा से हमने राधा कृष्ण राधा गोविंद गोपीनाथ जी का मैंने दर्शन पाया, उन्हीं की कृपा से हम पर रूप सनातन की कृपा हुई, रूप रघुनाथ जी की, उन्हीं की कृपा से जो कुछ मैं लिख रहा हूँ उन्हीं की कृपा। उन्होंने चैतन्य चैता में लिखा क्या है, जुगल के अतिरिक्त जुगल प्रेम है।
तो कृष्ण की लीलाओं का प्रकाश मानी जाती है, इसलिए वो माधुरी लीला का प्रकाश भी वही उन्हीं के द्वारा
है।
और जिस भाव वाला जो जीव होगा उसको उसी तरह के गुरु के साथ संपर्क कराने में, क्योंकि मूल गुरु
वही करता है, वही प्रेरणा देंगे। जबकि दासरस से प्रेरणा देंगे अब नित्यानंद प्रभु दास भक्ति के आचार्य बनकर, वही कृपा करेंगे तो शांत रस नहीं होगा, नेक नहीं होगा, वो कृपा करेंगे तो सत्य रस होगा। उसमें कृष्ण से सख्त भाव रखते थे, वात्सल्य रूप में वो वात्सल्य रूप से कृपा करते हुए जसोदा और नंद बाबा के महात्मा से, ये नंद जसोदा बलदेव जी से ही उनका प्रकट है संगनी से, और उन्हीं की कृपा होगी तो ईश्वर से अलग तत्व नहीं। आज वो नहीं आए विनोद बिहारी जी, मैंने तो आप ही के तरफ है ना, आप ही के पास से उनका घर है,
समझ में नहीं आ रही, वो तो पहले चलने
वाले थे। लगा ऊपर की दृष्टि से देखा जाए तो भगवान राम के विरह में दशरथ जी के प्राण एकदम से निकल गए थे, जबकि नंद बाबा मतलब गोपी इनमें से किसी के प्राण नहीं तर गए। तो ऐसे अगर ऊपर की दृष्टि से देखा जाए तो ऐसा लगता है कि उनकी भक्ति ज़्यादा प्रकार थी, जो उनके प्राण भी नहीं रुके उनके हृदय में।
किंतु ये विचार करो, नंद बाबा सोच रहे हैं कि यदि मैं मर जाऊँगा तो कृष्ण एक सेकंड भी जीवित नहीं रह सकेगा, इसलिए प्राण छोड़ना ठीक नहीं, इसे कृष्ण को कष्ट होगा, इसलिए मैं जितना भी कष्ट होगा मैं इसको सहूंगा, कृष्ण के लिए सहूंगा। और जो राम वो दशरथ जी नहीं सह सके, इसलिए उनसे ये श्रेष्ठ है।
दूसरा दशरथ जी का अपना जो शरीर है वो नित्य स्वरूप शरीर नहीं है, नंद जी का तो अपना
नहीं, उनका भी नित्य ही है, वो इस प्रकार का दिखलाया अभिनय करते, क्योंकि रामचंद्र जी जब लंका से लौट रहे थे सीता जी का पत्य किया तो दशरथ जी वहाँ पर आए और उनको समझाया जिन्हें ये पवित्र है इसको ग्रहण कर, तो जब वो मरे नहीं थे केवल वो माया की क्रिया दिखला दिया जो वो मर गए, मरे नहीं। रामचंद्र जी का किसी भौतिक लोगों से संबंध नहीं हो सकता,
सभी के जो स्वरूप है वो
चिन्मय विशेषकर के माता पिता। यदि मर गए हो तो होते वो कौशल्या में, कौशल्या और दशरथ
जो के कही थी,
ये नंद और इसमें नंद बाबा और यशोदा में देवी और वसुदेव में नहीं प्रवेश करते, ये सची माता और जगन्नाथ जी हैं, उनमें देवकी वसुदेव नंद बाबा यशोदा कश्यप अदिति सब उसमें प्रवेश करते, सब उसमें। तो ये जो मर ही गए तो उसमें प्रविष्ट क्या हो, ये सब नित्य लीला वाले। जैसे अभी द्वारका में वो स्थान दिखलाते हैं ब्राह्मण लोग और ये सब वहाँ के लोग, ये कृष्ण यहीं पर मर गए थे, यहीं पर उनकी अंत्येष्टि और ये अग्नि संस्कार हुआ, ये भी दिखलाते हैं।
भागवत तो इसको नहीं दिखलाते,
वो शुद्ध ग्रंथ है, तो मूर्खों के लिए है, जड़वादियों के,
भगवान को कभी जलाया
धारणा नहीं कर सकते ये चिन्मय चीज क्या है।
महाराज जी एक बात बताइए, छोटे से बालक के रूप में नारद जी ने 4 मास तक संतों के साथ संग किया और जाते समय उन्होंने कृपा की उनको, उन्होंने नारद जी को दीक्षा दी, मंत्र दिया ऋषियों ने, और नारद जी उसी भाव उसी मंत्र के साथ अपना भजन करते रहे और उस शरीर में, फिर उसके बाद जब दूसरे शरीर में आए तो उन्हें नारद जी का रूप धारण किया। उसमें फिर ब्रह्मा जी को गुरु बताया गया।
जल हर्षा नवीन को कहो ना एक गोली खांसी,
किचन का
किसको आ रहा है,
कुछ
तड़के की आ रही है ना,
किचन का दरवाजा
बंद कर, किचन में
नहीं है जरूर
तेल का कुछ चौंक सा लग रहा, चौंक सा चौंक ही है ये,
थोड़ी देर पहले लगा हुआ चौंक।
तुम्हारा सब्जी को अच्छा ना थी,
चौंक की महक क्यों आ रही है?
नवीन जी ने आज खूब कड़ा
लिया शरीर, अब वो ब्रह्मा जी के शिष्य के लाए। मूलतः तो उन्होंने क्या कहते हैं जो
ध्यान नहीं दिया
अपने पूर्व जन्म में, उन्होंने जो आपने बताया था चार कुमार जन आए थे उनसे उन्होंने दीक्षा लिया या मंत्र लिया, जो महात्मा चतुर्मासी में आए उनसे उन्होंने मंत्र दे के भजन किया और वहाँ पे उन्होंने भगवान के दर्शन किए, फिर उसी थोड़ी सी देर के लिए और उसी भाव में वो वहीं रहे उसी शरीर में, फिर नेक्स्ट लाइफ में वो ब्रह्मा जी के पुत्र बन के आए और दिव्य रूप दिव्य शरीर को प्राप्त हुए।
तो अब ऐसा नहीं था, कंफ्यूजन हो गया। पहले वो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र पहले जन्म, वैसे इनको समझ लीजिए कृष्ण के परिकर हैं,
कृष्ण के परिकर हैं,
लीला के परिकर हैं, सब समय बद्ध जीव नहीं। जैसे कृष्ण नित्य अपने स्वरूप में स्थित हैं, कभी किसी के पुत्र इत्यादि कर्म बराह इत्यादि के रूप में आते, उनका वो जन्म नहीं है। ऐसे नारद जी सब समय भगवान के परिकर हैं नित्य। तब कभी कभी जैसे कृष्ण लीला कौतुक के लिए दूसरों की शिक्षा के लिए आते हैं, वैसे सृष्टि के प्रारंभ में कब सृष्टि के प्रारंभ में अनादि कौन सी पहली है
उसका भी कोई
उसमें ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हुए। मानस पुत्र मैंने उसके पहले अभी मैथुनी सृष्टि नहीं थी, स्त्री पुरुष के संपर्क से चाहे किसी भी जानवर ये वृक्ष मनुष्य का होता है, स्त्री और पुरुष के संयोग से वह सृष्टि होती है, तो अभी इसकी प्रारंभिक नहीं हो सकता, अभी प्रारंभ इसका हुआ ही नहीं था। उसके पहले ब्रह्मा जी मन से इच्छा की हमारी प्रजाएं हों, ये जगत सृष्टि हो, क्योंकि कृष्ण ने भगवान ने उनको आदेश दिया है। तो उस समय में उनसे ध्यान मत बांटाओ भाई छोड़ दो, उन्होंने इच्छा की कि हमको पुत्र या संतति हो, मन में इच्छा की और पुत्र हुआ, इसको कहते हैं मानसी सृष्टि, मन के द्वारा मानसी गंगा। कृष्ण ने सोचा जे ये हो, लेट वर्ल्ड बी,
लेट इट बी
वर्ल्ड, वर्ल्ड हो गया, स अकामयत, उन्होंने कामना की और ये सब सृष्टि हुई। उसी तरह से सृष्टि के प्रारंभ में जब कृष्ण ने उनको मंत्र दिया चतुश्लोकी और उनके अंदर में शक्ति भर दी
ब्रह्मा जी,
ब्रह्मा जी के अंदर आप सृष्टि कर सकते हैं।
महाराज मेरे फूल श्रद्धा के फूल,
अरे उनको कहाँ रख दिया, क्या नाम विनोद बिहारी जी को,
विनोद बिहारी जी आ नहीं पाएंगे बताए ना,
क्या हो गया,
क्या हुआ,
काम में लग गए, जगत हो तो जगत कैसे हो, इसलिए पहले उन्होंने मन से कुछ मानसिक सृष्टि, जैसे नारद जी, मरीचि, वशिष्ठ, पुलह, क्रतु, अंगिरा, वशिष्ठ का नाम लिया है ना,
गौतम,
गौतम, ये सब जो हैं मन से ये उन्होंने इच्छा की और ये हमारे जैसा ही हो, तो वो लोग मन से उनकी सृष्टि, यहाँ इच्छा की और हो गई, इसलिए इनको मानस पुत्र कहते हैं। नारद, नार से ये मानसिक सृष्टि अर्थात उनके गले से निकल गए, गले से माने उनके गले में वेद और स्वर ब्रह्म है, इसलिए ये स्वर ब्रह्म के अवतार माने जाते हैं। नार, एक तो उनके नार से निकले, नार माने गला, और गला से निकल करके, गला से निकलने का माने क्या, उनके गले में जो कुछ है कंठहार के रूप में, क्या कंठहार, सारो वेद का सार, ये सब लेकर के कृष्ण कीर्तन करते हुए वो प्रकट हुए, इसलिए नारद कहते हैं। स्वभाव से ही वो भक्त थे, ये पहले पहले जन्म की बात कर रहा है। और ऐसे ही गान करते हुए उनका बाल्यपन इत्यादि नहीं है, किशोर रूप में बड़े सुंदर रूप में निकल करके कीर्तन करते हुए और वो वहाँ से चले गए अपने काम में, बीच बीच में ब्रह्मा जी का दर्शन करते थे और सब समय सब संसार में वो कृष्ण नाम इत्यादि करते।
और ये ब्रह्मा जी के पुत्र हुए इन्होंने जो
वो सभी
सभी के सभी
सभी,
तो उन सब के लिए ब्रह्मा जी उनके गुरु तो नहीं माने जाएंगे,
अब उनसे निकले हैं उनके
पुत्र तो ठीक,
वो पुत्र हैं इसलिए सभी लोग उनको पितामह कहते हैं। ब्रह्मा जी का अभिमान है ये हमारे पुत्र हैं, उन्होंने सबको ये कहा कि तुम लोग सृष्टि करो, अब इन्होंने तो किया था मानसिक सृष्टि, इनको कहा जी तुम कुछ मानसिक स्त्रियों को भी बनाए बुलाए और कहा जी तुम लोग इस सृष्टि को आगे बढ़ाओ। वशिष्ठ जी ने मान लिया, अत्रि जी ने भी मान लिया, अत्रि जी ने विवाह किया
अनुसुईया देवी,
अनुसुईया फिर मानसी थी
वो प्रथम मनु की कोई, पहले मनु को मनुष्य अपने मानस सृष्टि से की, उनकी कश्यप और अदिति ये जिसको उनके पुत्र जो मनु हुए ये लोग ऐसे मैथुनी सृष्टि से नहीं पैदा हुए, वही ब्रह्मा जी ने इनको भी सृष्टि की कश्यप अदिति, उससे कुछ लड़कियां और लड़के हुए और फिर इसके बाद में शंभु मनु हुए ब्रह्मा जी के, फिर उनसे भी कुछ मनसी हुए, इसके बाद में ये सृष्टि जो हम लोगों की अभी चल रही है इसके लिए इन लोगों को भार दिया, इसलिए वशिष्ठ जी ने अरुंधति को और अत्रि ने नहीं वशिष्ठ जी ने वशिष्ठ जी की पत्नी थी मुझे याद नहीं हमारा क्या नाम वशिष्ठ जी
अरुंधति
और वो अत्रि की
अनुसुईया
और ऐसे ही ऋषियों की सब, किंतु नारद जी ने माना नहीं, कहे तू हमारी बात नहीं मानेगा तो हम तो कृष्ण का भजन करेंगे और जगत में यही शिक्षा देंगे, जब उन्होंने नहीं माना कहे तो हमारी बात नहीं मानता तो जाओ तुम अभी गंधर्व होकर के जन्म लो और उसमें तुमको 60,000 गंधर्वियों से शादी करके, शादी माने वैसे रह करके तुमको इस भोग में जाना पड़ेगा, एव मस्तु, किंतु आपका आदेश पालनीय नहीं है क्योंकि भगवत भक्ति से ये रहित करने वाला है, हम दूसरे जन्म में जाएंगे किंतु जानबूझ करके हम इस संसार चक्र में नहीं पड़ेंगे। अब वो कुछ समय के बाद में गंधर्व होकर के उनका नाम हुआ कौन गंधर्व हमारे मुझे याद नहीं आ रहा, वो गंधर्व होकर के जन्मे, गंधर्वियाँ बड़ी सुंदरी, गंधर्व माने बहुत ही सुंदर जाति, बहुत सुंदर और राग रागनी के वाद्य के ये बड़े एक्सपर्ट होते हैं, गायन कला में नित्य कला में। और बड़े सुंदर स्वरूप, गला मीठा, आवाज। तो वो पूर्व जन्म के अभिसंपात से उनके साथ में कुछ वर्ष तक रहे। रहने के बाद में उन्होंने सोचा, जैसे पूर्व जन्म का संस्कार तो भक्ति का, भक्ति के ऊपर में कोई भी अभिसंपात इत्यादि काम नहीं कर सकता, स्थूल शरीर पर काम करता है, भक्ति पर कुछ नहीं। कोई असुर हो जाने पर, वृक्ष होने पर उसकी भक्ति एकदम जैसे की तैसी रहेगी, भक्ति पर नहीं होगा। इसलिए स्थूल शरीर से तो वो हो गए, और स्थूल शरीर का जो वांट है, डिजायर, जल वर्डली सब, खाना पीना और ये सब, ये तो रहेगा, किंतु भक्ति जैसी की तैसी रही, बल्कि और बढ़ी। उन्होंने सोचा, जैसे ब्रह्मा जी ने हमको ऐसा कर दिया, तो अब हमको क्या करना चाहिए। बाई चांस एक दिन ब्रह्मा जी का आदेश आया, हमारा यज्ञ हो रहा है पुष्कर में, तुम दल बल के साथ में, गंधर्व और गंधर्वियों के साथ में वहाँ पर नृत्य और गान परिवेशन करना, बांटना, माने सब लोगों को चित्त मनोरंजन कर। जब जब समाप्त हो जाएगा तो भगवान के लीला को गुणगान गायन करके सब लोगों को चित्त रंजन करना। सुनकर के बड़े प्रसन्न हुए, आज मौका आया, और वहाँ जा करके भगवान का गुणान बात करने के पश्चात उन्होंने कुछ ऐसी अश्लीलता की जिसे ब्रह्मा जी कुछ नाखुश हो गए। उन्होंने अर्धनग्न अवस्था में कुछ ऐसे पोज किए जो उनको मन अभीष्ट नहीं था। उन्होंने मन में सोचा, इन्होंने तो यही हमको अभी संपाद दिया इसी काम के लिए, और यही काम यदि कर रहा हूं तो इनको क्यों क्रोध हो रहा है। आ रहा है समझ में? हमको गंधर्व के लिए क्या, गंधर्वों का यही काम है। तो उसमें बहुत लोगों को बहुत सा रुचिकर हुआ, किंतु ब्रह्मा जी को कुछ खराब लगा। ब्रह्मा जी ने कहा, जी अभी संपा दे जाओ, तुम शुद्ध होकर के जन्म, बस एकदम नित्य करने लगे आनंद में विभोर होकर के, अब हमको भजन का शौक। ये इनका तीसरा जन्म है, शुद्रानी के गर्भ से ही जन्मी हुई, और उसी समय में वो भक्ति जो प्रबल कारण उनके अंदर में थी, उसके वजह से भगवान ने कृपा करके चतुर्सन को, जो कि पीछे से वो भी मानस पुत्र थे, और उनको भी उन्होंने कहा था ब्रह्मा जी ने, तुम सांसारिक सृष्टि करो, तो उन्होंने माना नहीं, तो वो ज्ञानी थे इसलिए उनके अभिसंपात को उन्होंने ग्रहण ही नहीं किया। अभिसंपात दो प्रकार के होते हैं, किसी ने कह दिया जे जाओ तुमको ये होगा, कहे तुम्हारा अभिसंपात तुम ही को लगे, हमको नहीं लगे। तो वैसा यदि प्रबल होगा ना तो ऐसा हो जाएगा। या जैसे चित्रकेतु महाराज जी को पार्वती ने अभिसंपात दिया, शिव जी इस पर दंग रहे, इसने अभिसंपात दे दिया, किंतु उन्होंने कुछ नहीं, हंस करके उन्होंने ग्रहण कर। ये भक्तों का युद्ध, बदले में भावना नहीं, देश नहीं है, वो जानते हैं जो भक्ति तो नित्य है, इस पर तो ये अभिसंपात का कुछ होगा नहीं असर, हम बेकार का क्यों उसको ऐसा करें। तो ये बड़ा चीज है ना,
भक्ति पे भरोसा,
भरोसा। इसलिए उन्होंने देखा जी हमारी भक्ति तो बिगड़ी नहीं, हम तो जैसे ठीक ही चल रही है, वो अब उनका अभिसंपात श्राप वो अंगीकार करते गए, उनके लिए कुछ अब सुविधा नहीं। तो उसी प्रकार से वो ज्ञानी लोग थे, तेजी थे, इसलिए उसका अभिसंपात ग्रहण नहीं किया। वो किसी प्रकार से संसार में नहीं आए, वो अब भक्ति उनको, उनके ऊपर नारद जी पर कृपा करके उनको प्रेरणा दे करके वो ला रही है, या भगवान ही को लेकर के इनसे मिलन किया बचपन में। अब वो बड़े हो गए, ये छोटे हो गए नारद जी, उन लोगों ने आकर के एक चातुर्मास का चार महीना वहाँ पर रहे, उस गांव में जहाँ पर ये पैदा हुए थे। इनकी मैया भी इनको बच्चे को लेकर के गोदी में पहुँच जाती, और इसको गोदी से उतार करके, अभी छोटा सा बच्चा, वो खेलने लगा, खेलने लगता, और वो उनके जूठे बर्तनों को साफ करके, चौके को लीप पोत करके एकदम ठीक, और उनके पत्ते में जो बचा रहा था ठाकुर जी का प्रसाद, उसमें कुछ लेकर के बच्चे को बड़े प्रेम से खिलाते, और ये बड़े श्रद्धा के साथ में खाता। मैंने कहा जो काम बड़े सत्संग के द्वारा लाभ होता है, वही वैष्णवों के पद जल पीने से चरणामृत और वैष्णवों के मुखारविंद से निकले हुए ये जूठा और दूसरा जूठा उनकी हरि कथा, यदि उसका कोई पान करे वैष्णव पद
भक्त पद धूली
भक्त पद धूली भक्त पद जल
भक्त भक्त
ये साधन का ये बल है। भक्तों की चरण धूली, यदि भक्त वैसे हैं प्रबल भक्ति वाले, उनके चरण का बहुत जल, उनके चरण धूली और उनका जूठी उच्छिष्ट, उच्छिष्ट माने एक हरि कथा और एक दूसरी ये प्रसाद, ये साधारण चीज नहीं है। ठाकुर जी के प्रसाद को कहते हैं महाप्रसाद, इनके प्रसाद को कहते हैं महा महा प्रसाद। तो हमारा उसी से चित्त बदल गया, इसी से चित्त हमारा बदल गया और मुझे अंदर में भक्ति की बहुत प्रेरणा हुई और मैं सोचा अब मुझको भी मंत्र लेना चाहिए। रोने लगे, 4 महीना बीत गया, ऐसा चलता रहा था, हरि कथा खूब सुनते ध्यान से बैठ जाता बच्चा, सब लोग इधर उधर हो जाते, वह एक टक से एक कान से ही सब सुनता, सुनने की कोई जरूरत भी नहीं है। क्यों? वो तो जिनसे कथा सुन रहे हैं उनसे भी भक्ति मार्ग में ऊंचे हैं, किंतु दिखला रहे हैं ये साधकों को ऐसा होना चाहिए। साधु को चित्र सब लीला कर रहे हैं। इसके बाद में 4 महीने के बाद में जब जाने लगे तो बच्चे को प्यार करने लगे तो बच्चा रोने लग गया, मैं कैसे आप लोगों को छोड़कर करूँगा, मैं कोई चिंता नहीं, तुमको ये मंत्र दे देते हैं भगवान का, इनका संग करना और इससे तुम्हारी सारी जितनी आकांक्षाएं सब पूरी। तो उन्होंने मंत्र दिया, मंत्र देने के बाद में उसको मैया उनको स्नेह करती, उसको सांप काट दिया। कौन काटवाया? भक्ति देवी ने प्रेरणा करके काल के द्वारा ये सब बनाकर उसे मैया को बटवा दिया। ये तो अन्याय हुआ ना, तो नहीं उसके लिए भी अच्छा हुआ। और वो दूसरा शूद्राणी थी, वो भगवत भक्त होकर के कहीं जन्म ली भक्तों के घर, उसका भी कल्याण इनका भी कल्याण। तो इन्होंने माता को छोड़ करके जंगल में चले गए और कठोर साधन आरंभ किया, स्नान किया और स्नान करके एकदम ध्यान कर, उनका ध्यान तो लीला मात्र अभिनय, हम लोगों जैसा नहीं, प्रयास नहीं, बस एकदम झट उनका ध्यान लग गया। कुछ दिनों के बाद में एक झलक भगवान की मिली, शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए उनको दर्शन, दर्शन देने के बाद में अंतर ध्यान हो जाने के बाद में ये विलाप करने रह नहीं सके, एकदम उन्मत्त हो गए। कुछ दिनों के बाद में प्रभु ने उनको आश्वासन दिया, तुम खेद मत करो, दुख मत, मैं इस शरीर से अब दर्शन नहीं दूंगा, तुम्हारे अंदर में कुछ अभी अनर्थ है और ये शरीर पूर्व जन्मों के कर्म के अनुसार में बनता है, तो ये कर्मजनित शरीर है, अब इसमें इससे अधिक नहीं होता और इसमें प्रेम नहीं होता, इसलिए तुम्हारे वो कर्म जो हैं कुछ क्षीण हो जाएंगे, इसके बाद में हम तुमको शरीर से बदल करके नित्य सिद्ध शरीर दे करके तुमको नित्य दर्शन, अब तुम अवशिष्ट जीवन कीर्तन करते हुए कृष्ण नाम का वीणा पर और सर्वत्र विचरण करो, समय अनुसार में काल आएगा, काल के सिर के ऊपर में पैर रख करके तुम हमारे पास में चला, तब नित्य दर्शन होगा, तुम सर्वत्र घूम जा सको। उन्होंने ऐसा ही किया, अब वो शोक मोह छोड़ करके निरंतर अश्रु प्रवाहित नेत्रों से रुद्ध गले से कृष्ण कीर्तन करते करते नारद मुनि बजाए बिना राधिका रमण नाम राधिका रमण राधा गोविंद गोविंद दामोदर माधवी इत्यादि सब नामों का गायन करते हुए संसार में घूमने लगे। काल आया, समय आया, बस उसके सिर पर पैर रख करके उन्होंने अलक्षित रूप में उस शरीर को बदल दिया और चिन्मय शरीर लेकर के भगवान के रूप में, पहले जिस रूप में वो थे उसी रूप में अब सर्वत्र घूम विचरण करने लगे, कभी गोलोक में, कभी वृंदावन में, कभी नारायण लोक में, कभी भूतल में, कभी उस भूतल में, कभी वहाँ, और अपने हजारों रूप धारण करके हजारों कृष्ण के अवतारों की लीलाओं में उनकी सेवा करने, कृष्ण कृष्ण जितना स्वरूप धारण करते हैं, राम निसिंह कल्कि वामन, स्वर्ग में उपेंद्र, वैकुंठ में नारायण,
अलग अलग ब्रह्मांडों में,
अलग अलग ब्रह्मांड में सब जगह एक एक रूप उनका होकर के उन सब की सेवा करने लगा
नारद जी का,
सब
लीलाओं के साथ,
सब लीलाओं। नंद बाबा एक नहीं है, यशोदा जी जितने ब्रह्मांड में लीलाएं हो रही हैं वहां पर एक एक कृष्ण के साथ में एक एक नंद यशोदा जी का स्वरूप है और सभी एक है।
अप्रकट में तो चल ही रहा है
वही, तो अप्रकट में तो चल ही रहा है, वहां पर तो ही है, यहाँ पर भी है, सर्वत्र है उनका। ये एक तरह से काय व्यूह समझो, जैसे कृष्ण का अवतार होता है विविध प्रकार से, 16,000 गोपियों के साथ में 16,000 रूप धारण कर लिया और सब अपना स्वतंत्र रूप में है, किसी के आश्रित कोई रूप नहीं। ये एक हाथ उठाएगा तो सभी उठाएंगे,
योगियों जैसा नहीं,
योगियों जैसा, योगी लोगों का ऐसा होता है यदि 10 रूप बनाएंगे तो 10 रूप एक जो करेगा वो सभी रूप करेंगे, ऐसा
नहीं। नारद जी का भी ऐसा नहीं है और कृष्ण का भी ऐसा नहीं, कोई कोई अंतर है इन दोनों के विस्तार।
अंतर ये जीव तत्व है और वो भगवान है, ये दास है वो प्रभु है।
कलयुग में जिस
तो फिर इनके गुरु
में द्वापर में भी नारद जी के हुए हैं, तो कलयुग में भी आते हैं
होंगे किसी न किसी। महाप्रभु जी थे तो उनके समय में तो श्रीवास पंडित के रूप में आए थे।
तो महाराज
ब्रह्मा जी, नारद जी यहाँ पर हो रहे आ रहे होंगे,
ब्रह्मा जी उनके गुरु हैं, ये साधक के समझाने के लिए,
समझाने के लिए वो नारद से भी बहुत उपाय है। नारद चले जाएंगे गोलोक वृंदावन में, सब में नारायण लोक में, ब्रह्मा जी अभी नहीं जाएंगे, किंतु इसके पहले वाले ब्रह्मा जो थे कितने करोड़ों ब्रह्मा तो बदल गए हैं, वो लोग तो पहुंच गए होंगे। ब्रह्मा तो पद है, नाम नहीं है, इनके अलग अलग नाम है। राष्ट्रपति नाम नहीं है, राष्ट्रपति कौन सा राष्ट्रपति, भारत को स्वाधीन कराने के समय में पहले जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे,
राजेंद्र
प्रसाद। तो अभी 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 कौन है, शंकर दयाल शर्मा, और वो दोनों एक हैं ऐसे जिस ब्रह्मा के पुत्र के रूप में नारद जी हुए थे, अब वही थोड़े ब्रह्मा जी हैं, कितने लाखों बदल गए।
हमारी जो परंपरा के जो हैं आदि ब्रह्मा जी,
तो हम लोग उस पद से ले लेते हैं, जो कोई जी जो इस पद पर अभी है वही हमारे परंपरा में है, जो को भी ब्रह्मा रहे होंगे हम लोगों के वो परंपरा में वो है, क्योंकि कृष्ण से निकले हैं ना, और कृष्ण ने उनको मंत्र दिया है, कृष्ण की उन्होंने आराधना की है, वो जीव तत्व है। शंकर जी विष्णु तत्व होने के नाते हम लोगों ने उनको ग्रहण नहीं किया, इनको ग्रहण किया, किंतु वो गुरु के रूप में उनको माना, किनको, शंकर जी को भी गुरु के रूप में।
महाराज जी, जो शिवरात्रि जो व्रत होता है इसमें जो शिव जी हैं विषय तत्व नहीं है, और ऐसे मैंने पढ़ा था परम गुरु जी ने एक जगह कहा था कि आश्रय तत्व में हम किसी का व्रत नहीं करते, उपवास नहीं करते, नहीं तो समस्त जितने गुरु हैं हमारे आश्रय तत्व हैं जितने, तो उसमें क्या
भाई, ये सब बातें समझने की होती हैं। मैं विश्व को मैं किसी की बात नहीं मानता, तो इसका मतलब अपने गुरु को और भगवान को कृष्ण को नहीं मानते। अभी कह दिया जैसे हम अपने गुरु को छोड़ करके और कृष्ण को छोड़ करके नहीं मानेंगे, तो गौरांग प्रभु की बात नहीं मानेंगे, तब उन्होंने कहा अच्छा हाँ उनको मान लें, तो नित्यानंद को क्या करेंगे, भक्ति विनोद ठाकुर के, ये सब कहानी की, ये समझने की बात है, इस रूप में समझना चाहिए। हमने कभी कह दिया क्रोधित होकर के मैं ब्रह्मा की बात नहीं मानता, इसका मतलब ये ब्रह्मा जी की बात नहीं मानता। ब्रह्मा जी जैसे और लोग हैं कोई भी हो उनकी बात नहीं मानता, यदि ये कहेंगे जो भक्ति को छोड़ दो और जागतिक नैतिकता को ग्रहण करो, शुद्ध भक्ति को छोड़ दो, महाप्रभु जी इस विचार को लेकर के देने के लिए आए थे उसको छोड़ो और ये समाज में रह करके रुपया पैसा लाओ और मस्जिद और मंदिर बनाओ और यही सब काम में लगाओ अपने जीवन को, यही गुरु की सबसे बड़ी सेवा है। कहते जी ये ब्रह्मा जी आकर के कहेंगे तो भी नहीं, मैं इसका मतलब अपनी दृढ़ता दिखला रहे हैं।
बस ठीक है,
ब्रह्मा जी बड़े हैं ना, हमारे रघुनाथ दास को स्वामी बड़े हैं।
रघुनाथ दास को स्वामी
क्यों क्यों बड़े हैं? उन्होंने तो सृष्टि की, रघुनाथ जी सृष्टि कर रहे हैं, हैं? हम तो शंकर जी की भी बात नहीं मानेंगे, रघुनाथ जी की मानेंगे। तो इसका मतलब नहीं है शंकर जी को मैं नहीं मान अवज्ञा कर रहा हूँ, ये बात नहीं। शंकर जी ने जिस भावना से उनकी उपासना की है साधारण दृष्टि में, हम उन्हें लेकर के रघुनाथ दास के विचारों को लेते हैं। यहाँ पर शंकर जी से सहमत हैं, उनके विचारों को लेते हैं। जो ब्रह्मा जी रुद्र, शंकर जी रुद्र होकर के आए हैं, जो अद्वैतवादी शंकर के रूप में आए हैं, उनके विचारों को तब उनका आदर करते हैं। ये प्रभु की आज्ञा को पालन करने के लिए वैसा रूप धारण करके वैसा भी किया। साधारण आदमी नहीं समझेंगे, जो जिस अधिकार में है वैसे ही बात समझेगा, कंफ्यूजन उसको हो जाएगा। शिव मोहिनी रूप दर्शन करने के लिए भगवान से इच्छा प्रकाश किया और भगवान ने उनको मोहिनी रूप दिखाया।
नहीं नहीं ये वो नहीं कह रहे, ये कह रहे हैं कि गोपेश्वर वाली बात करें, उसको गोपेश्वर की जगह शिव मोहिनी रूप शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं ये, कि उन्होंने रास में भी आए थे। तो
कौन, मैं ठीक से उन्हीं को बोलने दीजिए,
बोलिए।
गोपेश्वर मोहिनी रूप में वो गोपेश्वर नहीं हुए हैं, मोहिनी तो वह रूप है भगवान का जिसमें देवताओं को अमृत बांटा था और असुरों को वंचित किया, तो वो शंकर जी ने पीछे से उसी को दर्शन करने के लिए लालसा की और उनको उन्होंने रूप दिखाया। और शंकर इतने तत्वज्ञानी होने पर भी, इतने उच्च कोटि के भक्त होने पर भी मुग्ध होकर के उनके मोहिनी के पीछे पीछे चले। और ये जो गोपीश्वर जो रूप है वो कृष्ण रासलीला में बंसी बट में वृंदावन में यमुना के किनारे वहाँ पर उपस्थित थे, अकेले थे, उन्होंने अभिलाषा की रास हो, रास होगा, दृष्टा कौन होगा? एक दृष्टा तो होना चाहिए, दृष्टा नहीं होने से फिर रस की कमी हो जाएगी, इसलिए कोई दृष्टा की योग्य होना चाहिए। तो उनके दाहिने अंग से मैं बाएं अंग से श्रीमती राधिका जी हुई और उनके साथ में करोड़ों उनकी कायवीय गोपियां हुई। अब ये रासलीला के उपकरण एक कृष्ण हुए और एक गोपियां राधा जी इत्यादि हुई। स्थल हुआ चिन्ह में भूमि बंशीवत। अब दृष्टा कौन होगा? शंकर जैसा सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति विश्व भर में, ब्रह्मा भी नहीं जो अपने पर काबू कर सके और जिसकी वो प्रशंसा कर सके जगत में उसको दिखला सके, इसलिए उनके दाहिने अंग से
शिव जी
पैदा हुए। कौन शिव जी हुए? सदाशिव, जो सब समय सदाशिव महाविष्णु के रूप में गोलोक उसके नारायण धाम के नीचे
महेश धाम
में वो प्रतिष्ठित।
कैलाश धाम भी नहीं कहेंगे,
नहीं
महेश धाम,
कैलाश धाम वाले जो शंकर हैं उनके वो अंश कला है।
तो कैलाश धाम ब्रह्मांड के अंदर है,
अंदर है और वो है धाम नित्य है, इसलिए दृष्टा के रूप में ये जगत में इस चीज को प्रकाश कर सके और जीवों को इधर में आकृष्ट कर सके, इस रस को दिया जा सके, इसलिए दृष्टा के रूप में और उनको रखा दूर, और दूर रख करके और इधर में रास आरंभ हुआ। ये एक रूप है। दूसरा इसमें एक रूप है, वो जो वो निकले गोपी सर, इनमें वो जो कैलाश वाले जो शंकर हैं वो उसमें अविष्ट हो गए इनमें, और साधकों को दिखलाने के लिए उन्होंने योग माया की उपासना की, योग माया के उपासना पर प्रकट हुए, वो योग माया प्रकट हुई और उनसे कहा क्या चाहते हो ब्रह्म ब्रूही। उन्होंने कहा कि मैं रास स्थली का दर्शन करना चाहता हूँ, यहाँ पर रास होता है, उस रास को देखना चाहता, पुरुष रूप में नहीं जा सकते, इसलिए उनको पकड़ करके ब्रह्म हर्द में डुबा दिया। ये रंगनाथ जी के मंदिर के पास में है,
ब्रह्मकुंड,
उसमें लेकर के डुबा दिया, और डुबाने के बाद में परम सुंदरी गोपी हो गई
शिव जी।
तो अभी कुछ गड़बड़ी थी रास में, तो वो गई, दे तो दिया, किंतु ये नहीं बताया तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा पति कौन है, शादी नहीं हुई, गोपियों के गर्भ से जन्म नहीं लिया,
गोपी नहीं बने थे
अभी, गोपी नहीं, अंदर से नहीं गोपी बने थे, कुछ भाव था जो मैं शंकर हूँ वही या महाविष्णु हूँ,
स्नान करके आ रहा,
इसलिए वहाँ पर उनको रख दिया जाए, यहीं से लीला देखना, उसके ईशान कोण में वो गोपीश्वर महादेव का मंदिर पड़ता है, वहीं पर वहीं झाड़ियों में गुलमों में छिप करके इधर रास देख रहे हैं। उसने कहा आज रास में आनंद नहीं आ रहा है, गोपियों ने कहा हमें भी नहीं रहा है, आज निरस क्यों हो गया। तो उन्होंने कहा कोई अयोग्य दृष्टा है यहाँ, जिसके अंदर में कुछ अभी शुद्धि नहीं हुई है और रस उसके अंदर में नहीं है, वो व्यक्ति कोई देख रहा है। अब ढूंढने लगे सब, लाखों करोड़ों गोपियां और कृष्ण स्वयं ढूंढने लगे। थोड़ी देर के दूर में उन्होंने देखा एक गोपी वहाँ पर बैठी हुई है तो बड़ी सुंदरी, सब प्रकार से अलंकृत है। उन्होंने झट कहते एकदम नई है बिल्कुल, आज से कभी पहले देखा नहीं। बस गोपियों ने पकड़े, तुम कहाँ से रहती हो, तुम्हारा कौन सा गांव है,
पति कौन है,
तुम्हारा खसम या पति का नाम क्या है, तुम किसकी पत्नी हो, कौन से गोप से शादी, कौन गांव में तुम्हारी ससुराल है, तुम्हारी कौन ननद है, कौन क्या है, कुछ नहीं बात, तुम्हारे बाप का नाम क्या, तुम्हारी मैया का नाम क्या,
अता बता दी।
और जब नहीं बतलाया तो कहा यही है वो, तुम यहाँ पर क्यों आई, कैसे आई, बस गुलचे से मार करके उसका गला फुला दिया, गाल लाल कर दिया, उस महाविष्णु के भी गोपीश्वर महादेव के
रोने लगे,
वो रोने लगे। तब फिर उन्होंने योग माया का स्मरण किया, योग माया आई, उन्होंने कहा जी हमने इस पर कृपा की थी, आप लोग कृपा कर, ये इस रस का लोभी है अनर्थ, अब आप कृपा करके इसके अनर्थों को भी दूर कर दीजिए और इसका नाम आज से रख दिया जाए गोपीश्वरी। गोपियां ही जिनकी ईश्वरी हैं, इस रूप में रखा। और कृष्ण ने कहा जी अच्छा अब ये तुम्हारा काम रहेगा, इस वृंदावन में ब्रजमंडल में जो कोई पधारेगा उसके लिए तुम प्रदर्शन करेगी, जब तक तुम्हारा आदेश नहीं होगा, जब तक तुम्हारी कृपा नहीं होगी, तब तक ये गोपी भाव से कोई भी ब्रजमंडल में नहीं प्रवेश कर सकता। इसलिए उस समय से वृंदावन धाम के वो गेट कीपर जैसे रहे, यदि कोई प्रवेश करना चाहता है साधन में तो उनके शरणागत होकर से प्रार्थना करने पर वो उसको एंट्रेंस का अधिकार दे दें। तब से उनका नाम हुआ गोपीश्वर। साधारण लोगों के नजर में गोपीश्वर महादेव और भक्तों की दृष्टि में वो गोपीश्वरी हो गए। ये है आपका संदेह, कुछ इसमें कुछ ठीक रहा, ठीक हुआ? नहीं सुना यार। और अंत में बतलाया कृष्ण का प्रेम में पहले चित्त को निर्मल कर देता है हरिनाम। संसारिक कितनी भी अनर्थ दोष अपराध जो आत्मा को मलिन बनाए हुए है, ऊपर से मन को मलिन बनाए हुए है, उसको ये धो पोछ करके साफ कर देता है, जिसमें अपना प्रतिबिंब और कृष्ण का प्रतिबिंब, उनके रिलेशन का प्रतिबिंब उसमें रिफ्लेक्ट करता है। इसके बाद में जो जो ये प्रक्रियाएं आरंभ होती चलती है, उसी के अनुरूप में संसार की जितनी आग है, दुखों की लपटें, ये सभी शोक मोह भय, ये सब धीरे धीरे दूर हो जाता है। जितना ही नाम शुद्ध होता जाएगा उतना उतने ही कृष्ण की कृपा बरसेगी और उनके कृपा से जितने शुभ हैं हमारे हृदय में प्रवेश करें। अनर्थ दूर होना ही एक शुभ है, किंतु साथ साथ में कृष्ण की भक्ति का कोई जो भक्ति है अब वो निष्ठा के रूप में आएगी।